यीशु मसीह का प्रकाश तवाक्य क्रमांक 8 एक राष्ट्र का जन्म।
शुरुआत में आधी रात की पुकार का संदेश अन्वेषण न्याय के उद्घाटन पर समाप्त हुआ और आधी रात की पुकार का संदेश दंडात्मक न्याय के उद्घाटन पर समाप्त होता है। इस्लाम की तीसरी विपत्ति रविवार के कानून को पारित करने के कारण संयुक्त राज्य पर न्याय लाती है और ये नागरिक उत्पीड़क शक्ति के दबाव में अपने अपने रविवार के कानून को स्वीकार करने के कारण समूचे संसार पर निरंतर और बढ़ते हुए न्यायिक दंड का प्रतिनिधित्व करती है। इस शक्ति का प्रतिनिधित्व उन 10 राजाओं द्वारा किया गया है जिन्होंने टायर की वेश्या यजेबेल के साथ व्यभिचार किया है।
जब अमेरिका, जो धार्मिक स्वतंत्रता की भूमि है, पापसी के साथ मिलकर अंतरात्मा पर दबाव डालेगा और लोगों को झूठे सप्त का आदर करने के लिए बाध्य करेगा, तब समस्त विश्व के हर देश के लोग उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किए जाएंगे। टेस्टिमोनीज खंड 6:18।
महान विवाद में रविवार के कानून की लड़ाई तब पूरी तरह छिड़ जाती है। शैतान तब मसीह का रूप धरकर प्रकट होता है।
परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए पोपशाही की संस्था को लागू करने वाले ऐसे अध्यादेश द्वारा हमारा राष्ट्र धार्मिकता से अपना नाता पूरी तरह तोड़ देगा। जब प्रोटेस्टेंटवाद खाई के पार अपना हाथ बढ़ाकर रोमी शक्ति का हाथ थामेगा, जब वो गर्त के ऊपर से हाथ बढ़ाकर स्पिरिचुअलिज्म के साथ हाथ मिलाएगा, जब इस तिहरे संघ के प्रभाव में हमारा देश एक प्रोटेस्टेंट और गणतांत्रिक सरकार के रूप में अपने संविधान के प्रत्येक सिद्धांत का परित्याग कर देगा और पोप शाही के असत्य और भ्रमों के प्रसार के लिए प्रावधान करेगा, तब हम जान सकते हैं कि शैतान के अद्भुत कार्य करने का समय आ गया है और अंत निकट है। टेस्टिमोनीज खंड 5:4-55।
राष्ट्रीय धर्म त्याग के बाद राष्ट्रीय विनाश आता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग विशेष रूप से अनुग्रहित रहे हैं, परंतु जब वे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाएंगे, प्रोटेस्टेंटवाद का परित्याग करेंगे और पोपवाद को समर्थन देंगे, तो उनके अपराध का परिमाण पूर्ण हो जाएगा और राष्ट्रीय धर्मत्याग स्वर्गीय अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। इस धर्मत्याग का परिणाम राष्ट्रीय विनाश होगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, 2 मई 1893।
मूर्ख लाओदीकिया एक एडवेंटिस्ट पोप की सत्ता के साथ हाथ मिला लेते हैं और परास्त हो जाते हैं, जबकि मसीह का अन्य झुंड जो अभी भी बाबुल में है पोप की सत्ता की पकड़ से बच निकलता है।
वो महिमामय देश में भी प्रवेश करेगा और अनेक देश उलट दिए जाएंगे, परंतु ये उसके हाथ से बच निकलेंगे, अर्थात एदोम और मोआब और अम्मोनियों के प्रमुख। दानियेल 11:41।
इस्लाम अचानक संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला कर देता है जब सातवीं तुरही रविवार के कानून के पारित होने के कारण न्याय की विपत्ति लाती है।
और मैंने देखा और स्वर्ग के बीचों बीच उड़ते हुए एक स्वर्गदूत को सुना जो ऊंचे स्वर में कह रहा था, हाय 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 पृथ्वी के निवासियों पर उन 3 स्वर्गदूतों की तुराइयों की शेष ध्वनियों के कारण जो अभी बजनी बाकी हैं। प्रकाशित वाक्य 8:13।
प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में 2 गवाहों का प्रतिनिधित्व करने वाला चिन्ह, फिर यूहना द्वारा प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में सूर्य से वस्त्र पहने हुई एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है और उसे भविष्य सूचक तौर पर आरंभ और अंत के प्रतीकवाद के साथ भी दर्शाया गया है।
और स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह प्रकट हुआ, एक स्त्री जो सूर्य से आवृत थी और उसके पैरों के नीचे चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वो गर्भवती होकर चिल्ला रही थी, प्रसव वेदना से पीड़ित और जन्म देने के लिए तड़प रही थी। और स्वर्ग में एक और चिन्ह प्रकट हुआ, देखो एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे, और उसकी पूंछ ने स्वर्ग के तारों के तिहाई भाग को खींचकर उन्हें प्रूर में गिरा दिया, और वो अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा हो गया जो जन्म देने को तैयार थी, ताकि जैसे ही उसका बच्चा जन्मे वो उसे निगल जाए। और उसने एक पुत्र जन्मा जो लोहे की छड़ी से सब जातियों पर राज्य करने वाला था, और उसका बालक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। प्रकाशित वाक्य 12 हिंदू 7।
वह चंद्रमा पर खड़ी है और सूर्य को परिधान किए हुए है। चंद्रमा सूर्य का प्रतिबिंब है और इसलिए भविष्य सूचक रूप से सूर्य का प्रतीक है। उसके मुकुट में जो 12 तारे हैं वे प्राचीन इसराइल की शुरुआत में उसके 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्राचीन इसराइल के अंत में 12 चेलों का प्रतीक है। जो 12 तारे प्राचीन इसराइल के अंत में 12 चेले हैं, वही आधुनिक इसराइल की शुरुआत में 12 प्रेरित भी हैं। इस प्रकार वे आधुनिक इसराइल के अंत में 144,000 का प्रतीक है, जो चेले और प्रेरित है। उस इतिहास की शुरुआत में जिसमें चेले प्राचीन इसराइल के अंत का और प्रेरित आधुनिक इसराइल की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह स्त्री जो कलीसिया है, मसीह को गर्भ में धारण किए हुए थी, वह वही पुरुष शिशु है जो अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर के पास उठा लिया जाएगा। अतः वो स्त्री 144,000 के जन्म का भी प्रतीक है, जो मृत्यु की घाटी से पुनर्जीवित किए जाने के बाद स्वर्ग में चढ़ते हैं। जब वे स्वर्ग में होंगे तब वो एक और बालक को भी जन्म देगी, जो उस दूसरे झुंड का प्रतिनिधित्व करता है जो रविवार के कानून के समय बाबुल से बाहर आता है।
प्रसव पीड़ा होने से पहले ही उसने जन्म दिया, दर्द आने से पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दे दिया। ऐसी बात किसने सुनी है? ऐसी बातें किसने देखी हैं? क्या धरती एक ही दिन में जन्म दे सकती है, या क्या एक साथ ही कोई राष्ट्र जन्म ले सकता है? क्योंकि ज्यों ही सियोन को प्रसव पीड़ा हुई, उसने अपनी संतान को जन्म दे दिया। क्या मैं प्रसव तक लाकर जन्म न कराऊं? प्रभु कहता है। क्या मैं जन्म कराऊं और गर्भ को बंद कर दूं? तेरा परमेश्वर कहता है। यशाया 27:9।
पृथ्वी के पशु के शासन के समय एक राष्ट्र एक ही क्षण में जन्म लेता है। वो राष्ट्र 144,000 है, क्योंकि वे लोग हैं जो मसीह के चरित्र को पूर्णतः प्रतिबिंबित करते हैं। वे पुरुष बालक यीशु द्वारा प्रतीकित हैं। वे यशायाह का पुरुष बालक हैं जो स्त्री के प्रसव पीड़ा में जाने से पहले ही जन्म लेता है। वे सूखी पड़ी मृत हड्डियां जिन पर संसार ने तब उल्लास मनाया था जब उन्हें अथाह कुंड से निकले पशु ने मार डाला था, यरूशलेम में सांत्वना पाएंगी, और तब वे उस स्त्री के साथ आनंदित होंगी जो पुरुष बालक को जन्म देती है। वो प्रसव पीड़ा में जाने से पहले ही उन्हें जन्म दे देती है, और फिर वो प्रसव करती है और अपने अन्य बच्चों को जन्म देती है। उसी समय अन्य जातियां तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रत्युत्तर बहती नदी की तरह देती हैं, क्योंकि वो संदेश ज्वारीय लहर की भांति देश भर में छा जाता है। वे एक बड़े संकट में जन्म लेते हैं जो उसकी प्रसव पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकाशित वाक्य 12 की स्त्री मूल रूप से जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। पहिलाठे 144,000 हैं जिन्हें पहिलाठे फल के रूप में पहचाना गया है, और अन्य जातियां ग्रीष्मकालीन फसल के महासंग्रह के रूप में।
यरूशलेम के साथ आनंद करो और उसके साथ मगन हो, हे उसके सब प्रेमियों, उसके साथ अत्यंत हर्षित हो, हे सब जो उसके लिए विलाप करते हो, ताकि तुम दूध पीकर उसकी सांत्वनाओं के स्तनों से तृप्त हो, ताकि तुम दुहर उसकी महिमा की बहुतायत से आनंदित हो। क्योंकि प्रभु यों कहता है, देखो मैं उसके लिए शांति को नदी के समान फैला दूंगा और अन्य जातियों की महिमा को बहती हुई धारा के समान। तब तुम दूध पियोगे, तुम उसके कूल्हे पर उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर दुलराए जाओगे। जैसे कोई माता अपने पुत्र को सांत्वना देती है, वैसे ही मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, और तुम यरूशलेम में सांत्वना पाओगे। और जब तुम ये देखोगे तब तुम्हारा हृदय आनंदित होगा, और तुम्हारी हड्डियां वनस्पति के समान फले फूलेंगी, और प्रभु का हाथ उसके दासों की ओर प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के विरुद्ध उसका रोष प्रकट होगा। यशाया 27:10-14।
जो यरूशलेम के लिए शोक करते हैं वे वही है जो उसके भीतर किए गए घृणित कर्मों पर आहे भरते और रोते हैं, और वे मुहर बंद हैं। उन पर ये मुहर रविवार के कानून से पहले ही लग जाती है। हम अब कलीसिया के लिए समापन कार्य में हैं, जो 144,000 पर मुहर लगाए जाने के अंतिम क्षण हैं।
परमेश्वर की सच्ची प्रजा, जिसके हृदय में प्रभु के कार्य की भावना और आत्माओं के उद्धार की चिंता होती है, पाप को सदैव उसके वास्तविक पापपूर्ण स्वरूप में देखेगी। वो हमेशा उन पापों से निष्ठापूर्वक और स्पष्ट रीति से निपटने के पक्ष में रहेगी जो सहज ही परमेश्वर की प्रजा को घेर लेते हैं, विशेषकर कलीसिया के लिए समापन के कार्य में उस मुहर बंदी के समय में जब 144,000 परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष खड़े होंगे। वो परमेश्वर के नामधारी लोगों की बुराइयों को सबसे गहराई से महसूस करेगी। ये बात भविष्यद्वक्ता के उस चित्रण द्वारा बलपूर्वक प्रकट की गई है जिसमें अंतिम कार्य को ऐसे पुरुषों की छवि से दिखाया गया है जिन जिन के हाथ में वध का हथियार था। उनमें से एक मनुष्य सन का वस्त्र पहने हुए था और उसकी कमर पर लेखक का दवात था। और प्रभु ने उससे कहा, नगर के बीच से, यरूशलेम के बीच से होकर निकल और उन पुरुषों के माथों पर एक चिन्ह कर जो उसके बीच में किए जा रहे सब घृणित कामों के कारण आहे भरते और विलाप करते हैं। टेस्टिमोनीज खंड 3:266।
जो आह भरते और विलाप करते हैं उन पर मुहर लगा दी जाती है, इससे पहले कि वध के हथियारों से लैस विनाशकारी स्वर्गदूत कलीसिया, जिसे यरूशलेम के रूप में दर्शाया गया है, से होकर गुजरे।
आदेश ये है, नगर के मध्य से, यरूशलेम के मध्य से होकर निकलो और उन मनुष्यों के माथों पर एक चिन्ह लगा दो जो वहां के बीच किए जा रहे सब घृणित कर्मों के कारण आहें भरते और विलाप करते हैं। ये आहें भरने और विलाप करने वाले लोग जीवन के वचन का प्रचार करते रहे थे। उन्होंने ताड़ना दी, परामर्श दिया और विनती की थी। परमेश्वर का अपमान करते आ रहे कुछ लोगों ने पश्चाताप किया और उसके सम्मुख अपने हृदयों को दीन किया, परंतु प्रभु की महिमा इज़राइल से प्रस्थान कर चुकी थी। यद्यपि बहुत से लोग अब भी धर्म के बाहरी रूपों को निभाते रहे, पर उसकी शक्ति और उपस्थिति का अभाव था। जब उसका क्रोध न्याय के रूप में प्रकट होगा, तब मसीह के ये विनम्र समर्पित अनुयायी अपनी आत्मिक पीड़ा के कारण शेष संसार से अलग पहचाने जाएंगे, जो विलाप और रोने, फटकार और चेतावनियों के रूप में प्रकट होती है। जबकि अन्य लोग विद्यमान बुराई पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं और सर्वत्र फैली भारी दुष्टता को उचित ठहराते हैं, जो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए उत्साह और आत्माओं के प्रति प्रेम रखते हैं, वे किसी की कृपा पाने के लिए चुप नहीं रहेंगे। उनकी धर्मी आत्माएँ अधर्मियों के अपवित्र कामों और वार्तालाप से दिन प्रतिदिन व्यथित रहती हैं। वे अधर्म की उफनती बाढ़ को रोकने में असमर्थ हैं और इसलिए शोक और आशंका से भर जाते हैं। वे परमेश्वर के सामने विलाप करते हैं ये देखकर कि जिनके घरों में बड़ा प्रकाश रहा है उन्हीं में धर्म का अपमान हो रहा है। वे विलाप करते हैं और अपनी आत्माओं को दीन करते हैं क्योंकि कलीसिया में घमंड, लोभ, स्वार्थ और लगभग हर प्रकार की छल कपट विद्यमान है। परमेश्वर की आत्मा जो फटकार के लिए प्रेरित करती है, पाए तले रौंदी जाती है, जबकि शैतान के सेवक जय मनाते हैं। परमेश्वर का अपमान होता है, सत्य निष्प्रभावी कर दिया जाता है। जो लोग अपने आत्मिक पतन पर दुखित नहीं होते और न दूसरों के पापों पर शोक करते हैं, वे परमेश्वर की मुहर से वंचित रहेंगे। प्रभु अपने दूतों को, जिनके हाथों में वध करने के हथियार हैं, आज्ञा देता है, उसके पीछे नगर में होकर जाओ और मारो, न किसी को बख्शना न दया करना। बूढ़ों और जवानों, कुमारियों, छोटे बच्चों और स्त्रियों, सबको पूरी तरह मार डालो, पर जिस किसी के ऊपर चिन्ह हो उसके निकट मत जाना और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करना। तब वे उस गृह के सामने जो वृद्ध पुरुष थे उनसे आरंभ करने लगे। यहाँ हम देखते हैं कि कलीसिया प्रभु का पवित्र स्थान उस वक्त सबसे पहले परमेश्वर के क्रोध का कपरहार महसूस करने वाली थी। प्राचीन पुरुष, नए एकजिया और जो लोगों के आत्मिक हितों के प्रहरी थे, उन्होंने अपने सौंपे गए भरोसे के साथ विश्वासघात किया था। उन्होंने ये मत अपना लिया था कि हमें पहले के दिनों की तरह चमत्कारों और परमेश्वर की शक्ति के विशिष्ट प्रगटीकरण की खोज नहीं करनी चाहिए। समय बदल गया है, ये बातें उनके अविश्वास को और दृढ़ करती हैं, और वे कहते हैं, प्रभु न तो भलाई करेगा और न ही बुराई करेगा। वो इतना दयालु है कि अपने लोगों पर न्याय का दंड देने नहीं आएगा। इस प्रकार शांति और सुरक्षा का नारा उन लोगों के मुख से निकलता है जो फिर कभी अपनी आवाज़ को तुरही की तरह ऊंचा नहीं उठाएंगे, ताकि परमेश्वर के लोगों को, उनके अपराध और याकूब के घराने को उनके पाप दिखा सके। ये गूंगे कुत्ते जो भौंकते नहीं थे, वही एक अपमानित परमेश्वर के न्यायोचित प्रतिशोध को अनुभव करते हैं। पुरुष, कुमारिया और छोटे बच्चे सब एक साथ नाश हो जाते हैं। टेस्टिमोनीज वॉल्यूम 5:2-10, 2 हेक।
यशाया अध्याय 40 से दोहराव के प्रतीक का उपयोग करके आरंभ होता है, जो आधी रात की पुकार संदेश का एक भविष्य सूचक चिन्ह है। ये दूसरा संदेश है जो बाबुल के पतन के संदेश के साथ संयुक्त हो जाता है। भविष्य सूचक रूप से व्यक्त किए जाने पर बाबुल का पतन दोहराया जाता है। वाक्यांश है, बाबुल गिर गया है, गिर गया है।
और उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया, ये कहता हुआ, बाबुल गिर गया, गिर गया वो महान नगर, क्योंकि उसने सब जातियों को अपने व्यभिचार के कोप की दाख मदिरा पिला दी है। प्रकाशित वाक्य 14:8।
वास्तविक बाबुल के दो बाइबिलीय पतन हैं और आध्यात्मिक बाबुल के भी दो बाइबिलीय पतन हैं। ये मिलकर चार ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जो बाबुल के पतन की भविष्य सूचक विशेषताओं की पहचान करते हैं।
और उसने बड़े बल के साथ ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, महान बाबुल गिर गया है, गिर गया है, और वो दुष्टात्माओं का निवास स्थान, हर एक अशुद्ध आत्मा का ठिकाना और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का पिंजरा बन गया है। प्रकाशित वाक्य 18:2।
निम्रोद के समय शाब्दिक बाबुल का पतन बाबेल के रूप में हुआ और बेलशज्जर के समय भी शाब्दिक बाबुल गिरा। आध्यात्मिक बाबुल का पतन 1798 में हुआ और उसका अंतिम पतन धर्म ग्रंथों में बार बार दर्शाया गया है। इसी कारण बाबुल के पतन का संदेश दोहरीकरण के भविष्य सूचक प्रतीकवाद को समेटे हुए है। बाबुल के पतन के साथ एक दोहरीकरण होता है, परंतु इस दोहरीकरण की घटना के दो अन्य प्रमुख भविष्य सूचक कारण भी हैं। दूसरा कारण ये है कि संदेश के रूप में ये ऐसे संदेश का प्रतिनिधित्व करता है जो दूसरे संदेश के साथ जुड़ा हुआ है। ये दो संदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे स्वर्गदूत के संदेश के अर्थ और संरचना से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सत्य भी हैं, परंतु हम केवल ये उल्लेख कर रहे हैं कि यशाया वार उनतिम भविष्य सूचक कथा, जो अध्याय 40 से आरंभ होती है, सांत्वनादाता के प्रतीक के दोहराव से शुरू होती है, जिसे मसीह ने स्वर्गीय पवित्र स्थान में ठहरते समय अपने लोगों को प्रदान करने का वचन दिया था।
सांत्वना दो मेरे लोगों को, तुम्हारा परमेश्वर कहता है। यरूशलेम को दिलासा देकर कहो और उसे पुकार कर बताओ कि उसका युद्ध पूरा हो गया है, उसका अधर्म क्षमा किया गया है, क्योंकि उसने अपने सब पापों के लिए प्रभु के हाथ से दोगुना प्राप्त कर लिया है। यशाया 40:1-2।
बाइबल में ऐसा कोई और खंड नहीं है जो मसीह के चरित्र के उस पहलू के बारे में कि वे अल्फा और ओमेगा है, यशाया के अध्याय 40 से पुस्तक के अंत तक के खंड जितनी स्पष्टता से बोलता हो। अल्फा और ओमेगा के रूप में मसीह इस खंड पर अपने नाम के हस्ताक्षर अल्फा और ओमेगा रखते हैं, क्योंकि जब आप यशाया के अंत तक पहुंचते हैं तो वो फिर से सांत्वनादाता का उल्लेख करता है, क्योंकि मसीह वचन है और वो आरंभ और अंत है।
यहोवा यूं कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांवों की चौकी। जो घर तुम मेरे लिए बनाते हो वो कहाँ है और मेरे विश्राम का स्थान कहाँ है? क्योंकि ये सब वस्तुएं मेरे हाथ ने बनाई हैं और ये सब होती आई हैं, यहोवा की ये वाणी है। पर मैं उसी पर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित आत्मा का है और मेरे वचन से कांपता है। जो बैल का वध करता है वो मानो मनुष्य का वध करता है, जो मेमना बलि चढ़ाता है वो मानो कुत्ते का गला काटता है, जो भेंट चढ़ाता है वो मानो सुअर का लहू अर्पित करता है, जो धूप जलाता है वो मानो किसी मूर्ति को धन्य ठहराता है। हाँ, उन्होंने अपने ही मार्ग चुन लिए हैं और उनका मन अपनी घृणित बातों में प्रसन्न होता है। मैं भी उनके भ्रम चुनूंगा और जो वे डरते हैं उसे उन पर ले आऊंगा, क्योंकि जब मैंने बुलाया तब किसी ने उत्तर नहीं दिया, जब मैंने कहा तब उन्होंने नहीं सुना, पर उन्होंने मेरी आंखों के सामने बुरा किया और उसे चुना जिसमें मेरी प्रसन्नता नहीं। यशाया 66:1-3।
ये प्रश्न उठता है कि परमेश्वर के लोगों ने उसके लिए कैसा घर बनाया, क्या उन्होंने पतरस का आध्यात्मिक घर बनाया या शैतान की सभा? परमेश्वर बताता है कि जो घर उसने बनाया है वो उन लोगों से बना है जो दीन और खेदित आत्मा वाले हैं और जो उसके वचन से कांपते हैं। वो अपने वचन से कांपने वालों की तुलना उस दूसरे वर्ग से करता है जो अशुद्ध भेंट चढ़ाते हैं और जिन्होंने अपनी ही राह चुन ली है। अशुद्ध भेंट चढ़ाने वाला वो वर्ग, जैसा यहूदियों के साथ हुआ, ये पाएगा कि उनका घर उनके लिए उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। सब भविष्यद्वक्ता संसार के अंत के विषय में बोलते हैं, और ये बुद्धिमानों जो उसके वचन से काम पते हैं और उन मूर्खों के बीच के भेद का एक चित्रण है जो परमेश्वर को घृणित वस्तुएं अर्पित कर रहे हैं, ऐसी घृणाएं जिनमें उनकी आत्माएं प्रसन्न होती हैं। इसी कारण परमेश्वर मूर्ख लौदिकिया की कुआरियों के लिए भ्रमों को चुनेगा, जो वही भ्रम है जिसे प्रेरित पौलुस बताता है कि झूठ को स्वीकार करने के कारण लाया जाता है। जूड एडवेंटिज्म के इतिहास में एक विशिष्ट प्रतीत है और उसे 1863 में निर्माताओं ने स्वीकार किया तथा एडवेंटिज्म के इतिहास भर में उसी पर निर्माण किया गया। वो एक ऐसा झूठ था जिसने एक झूठी नींव उत्पन्न की और तब उन्होंने एक नकली झूठा मंदिर खड़ा करना शुरू किया। सच्चे मंदिर की जालसाजी का उनका काम अंतिम दिनों तक चलता रहता है। यशाया अध्याय 66 को बुद्धिमान और मूर्ख कुओं वारियों के विभाजन के संदर्भ में स्थापित करता है। यशाया उस भविष्यद्वाणी संबंधी इतिहास की पहचान कर रहा है जिसे उसने यशाया 40 के पहले पद में चिह्नित किया था, जब मसीह ने 18 जुलाई 2020 की निराशा के 3.5 प्रतीकात्मक दिन बाद सांत्वनादाता भेजने का वादा किया था।
उसके वचन से कांपने वालों, प्रभु का वचन सुनो। तुम्हारे वे भाई जिन्होंने तुमसे घृणा की, जिन्होंने मेरे नाम के कारण तुम्हें निकाल बाहर किया, कहते थे प्रभु की महिमा हो, परंतु वो तुम्हारे आनंद के लिए प्रकट होगा और वे लज्जित होंगे। नगर से कोलाहल की आवाज, मंदिर से एक आवाज, प्रभु की आवाज, जो अपने शत्रुओं को प्रतिदान देता है। यशाया 66:6।
1798 से 1844 तक मिलराइटो के आंदोलन में प्रभु ने एक आध्यात्मिक मंदिर स्थापित किया जिसमें वो वाचा के दूत के रूप में 1844 में अचानक आ गया। प्रभु 144,000 के आंदोलन में एक आध्यात्मिक मंदिर स्थापित करता है ताकि वो अचानक आकर उस मंदिर के साथ वाचा में प्रवेश करे। पतरस अपने पहले पत्र के अध्याय 2 में उस मंदिर को आध्यात्मिक घर कहता है जो प्रभु का वचन सुनते हैं। वे वही है जिनका यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में उल्लेख करता है जब वो कहता है कि जो सुनते हैं वे धन्य है। वे पताका है क्योंकि पताका इज़राइल के निष्कासितों से बनी है। मूर्ख लाओदीकिया वासी शर्मिंदा होंगे जब प्रभु अपने वचन से कांपने वाले फिलाडेल्फिया वासियों में अपने आप को महिमा देगा, और उसका वचन सत्य है। जब बुद्धिमान और मूर्खों को अन्य वर्ग से अलग किया जा रहा होता है, उस अवधि में सुनाई देने वाली तीन आवाजें नगर से, मंदिर से और प्रतिफल देने वाले प्रभु से आती हैं। नगर से आने वाली पहली आवाज कोलाहल की आवाज है, और वो कोलाहल उस सांत्वनादाता का आगमन है जो अचानक आता है।
जब पिंतेकुस्त का दिन आ गया, वे सब एक मन होकर एक ही स्थान पर थे, और अचानक स्वर्ग से ऐसा शब्द हुआ जैसे प्रचंड वेग से बहने वाली आंधी का, और वो उस सारे घर को भर गया जहां वे बैठे थे, और उन्हें आग के समान विभाजित जिह्वाएं दिखाई दी, और वे उनमें से हर एक पर आ ठहरी। प्रेरितों के काम 2 तक थीं।
प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 2 में ध्वनि के रूप में अनुदित शब्द का अर्थ शोर और अफवाह होता है। अफवाह एक भविष्यवाणी है। नगर से आने वाली ध्वनि या शोर को प्रचंड त्राप वायु द्वारा दर्शाया गया है। नगर से आने वाले शोर की आवाज इस्लाम का अफवाह होता है या भविष्यवाणी संदेश है जो सातवनादाता के आगमन का संकेत देता है। सूखी हड्डियों की उस घाटी में जो उस बड़ी नगरी की सड़क में मारे गए थे, जिसे आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहा जाता है, जहां हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यशाया के 40वें अध्याय में वो आवाज जिसे वाचा के दूत के लिए मार्ग तैयार करना था, ने पूछा कि उसे कौन सा संदेश पुकारना चाहिए। उसे इस्लाम का संदेश पुकारने को कहा गया। प्रेरितों के काम में वो ध्वनि जिसने पतरस के आत्मिक घर को भर दिया। प्रचंड चलती हुई आंधी थी जो यहेज्केल के 37वें अध्याय में इस्लाम की चारों पवनों से आई थी।
नगर से कोलाहल की आवाज, मंदिर से आवाज, यहोवा की आवाज जो अपने शत्रुओं को प्रतिफल देता है। यशाया 64:6।
जिस सड़क पर हमारे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, वहीं से सांत्वनादाता सबसे पहले जंगल में पुकारने वाले की आवाज को बताता है कि संदेश क्या होना है। फिर वो खड़ा किया गया मंदिर जो एक शक्तिशाली सेना है, जैसा कि 1799 से 1844 के आरंभीय आंदोलन में निरूपित है, उस पुकार को और प्रबल कर देता है। जब वही शक्तिशाली सेना इस्लाम की पुकार का उद्घोष करती हुई आगे बढ़ती है, तो ये तीसरी आवाज तक ले जाती है जो रविवार के कानून के पारित होने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका पर परमेश्वर के न्याय की आवाज के पहचान कराती है। वही प्रभु प्रतिदान करता है। ये तीनों आवाजें सात गर्जनाओं के गुप्त इतिहास की संरचना के भीतर नियंत्रित है, जो उस इब्रानी शब्द के आरंभ, मध्य और अंत के अक्षरों का प्रतिनिधित्व करती है जिसे अद्भुत भाषाविद ने रचा था और जिसका अनुवाद सत्य किया जाता है। ये सब गढ़ा नहीं जा सकता। जिस भविष्यवाणी संबंधी इतिहास की हम पहचान करते आ रहे हैं, उसके अनुरूप इसके बाद यशाया एक राष्ट्र के जन्म पर चर्चा करता है।
प्रसव पीड़ा होने से पहले ही उसने जन्म दिया, दर्द आने से पहले ही उसने एक पुत्र को जन्म दे दिया। ऐसी बात किसने सुनी है? ऐसी बातें किसने देखी हैं? क्या धरती एक ही दिन में जन्म दे सकती है, या क्या एक साथ ही कोई राष्ट्र जन्म ले सकता है? क्योंकि ज्यों ही सियोन को प्रसव पीड़ा हुई, उसने अपनी संतान को जन्म दे दिया। क्या मैं प्रसव तक लाकर जन्म न कराऊं? प्रभु कहता है। क्या मैं जन्म कराऊं और गर्भ को बंद कर दूं? तेरा परमेश्वर कहता है। यशाया 67:9।
जो राष्ट्र स्त्री की प्रसव पीड़ा से पहले जन्म लेता है, वो हाल ही में सड़क पर मरा और सूखा पड़ा था, जबकि सारा संसार उसकी परिस्थितियों पर आनंद मना रहा था। परंतु जब दो गवाह खड़े हुए, तो जो उनकी मृत्यु पर आनंद मना रहे थे, वे भयभीत हो गए। जब वे मृत, सूखे, वध किए गए शव एक राष्ट्र के रूप में खड़े हो जाएंगे, तब जो जो यरूशलेम से प्रेम करते हैं, वे सब उसके साथ आनंदित होंगे। यरूशलेम से प्रेम करने वालों में केवल 144,000 का राष्ट्र ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का दूसरा झुंड भी शामिल है, जिन्हें तब बाबेल से बाहर बुलाया जाता है। 18 जुलाई 2020 की निराशा से पुनरुत्थान सांत्वनादाता के आगमन से पूरा होता है, जिससे वे मृत, सूखी हड्डियां जड़ी बूटी के समान फले फूलेंगी।
यरूशलेम के साथ आनंद करो और उसके साथ मगन हो, हे उसके सब प्रेमियों, उसके साथ अत्यंत हर्षित हो, हे सब जो उसके लिए विलाप करते हो, ताकि तुम दूध पीकर उसकी सांत्वनाओं के स्तनों से तृप्त हो, ताकि तुम दुहर उसकी महिमा की बहुतायत से आनंदित हो। क्योंकि प्रभु यों कहता है, देखो मैं उसके लिए शांति को नदी के समान फैला दूंगा और अन्य जातियों की महिमा को बहती हुई धारा के समान। तब तुम दूध पियोगे, तुम उसके कूल्हे पर उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर दुलराए जाओगे। जैसे कोई माता अपने पुत्र को सांत्वना देती है, वैसे ही मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, और तुम यरूशलेम में सांत्वना पाओगे। और जब तुम ये देखोगे, तब तुम्हारा हृदय आनंदित होगा और तुम्हारी हड्डियां वनस्पति के समान फले फूलेंगी। और प्रभु का हाथ उसके दासों की ओर प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के विरुद्ध उसका रोष प्रकट होगा। यशाया 67:10-14।
अल्फा और ओमेगा यशाया के अंतिम वृत्तांत का अंत ठीक वही रख देता है जहां इसका आरंभ हुआ था, सांत्वना देने वाले के आगमन की पहचान के साथ। और जैसा कि सदा होता आया है, जो भी संदेश एलिया के संदेश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे प्रभु द्वारा पृथ्वी पर शाप के साथ प्रहार करने के संदर्भ में रखा जाता है।
क्योंकि देखो, प्रभु आग के साथ और अपने रथों सहित जो बवंडर के समान है आएगा, ताकि वो अपने क्रोध को प्रचंडता के साथ उतारे और अपनी ताड़ना आग की ज्वालाओं से दे। क्योंकि आग और अपनी तलवार के द्वारा प्रभु सब मनुष्यों के साथ न्याय करेगा, और प्रभु के मारे हुए बहुत होंगे, जो लोग बागों में बीच के एक वृक्ष के पीछे अपने को पवित्र और शुद्ध ठहराते हैं और सुअर का मांस, घृणित वस्तुएं और चूहा खाते हैं, वे सब एक साथ भस्म किए जाएंगे। ये प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं उनके कर्म और उनके विचार जानता हूँ। ऐसा होगा कि मैं सब जातियों और भाषाओं को इकट्ठा करूँगा और वे आएंगे और मेरी महिमा देखेंगे। यशाया 66:15-18।
वे मूर्ख लाओदीकियाई एडवेंटिस्ट जो एदन की वाटिका के बीच में स्थित भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के पीछे हैं, अपने आप को पवित्र और शुद्ध बना रहे हैं, ऐसा दावा करते हैं, जबकि वे वास्तव में बाबुल की अशुद्ध शिक्षाओं का भक्षण कर रहे हैं और जिन पापों से वे इतना प्रेम करते हैं कि उन्हें छोड़ नहीं पाते, उनके कारण आदम और हव्वा की तरह छिप रहे हैं। वे अन्य सब राष्ट्रों के साथ भस्म कर दिए जाएंगे। उनकी तुलना उन बुद्धिमानों से की गई है जो एक चिन्ह होंगे। ये चिन्ह ध्वज है जो विश्राम दिन का प्रतिनिधित्व करता है, जो तेरे प्रभु परमेश्वर का वो चिन्ह है जो वास्तव में अपनी प्रजा को पवित्र करता है।
इस कारण इज़राइल के लोग विश्राम दिन को मानेंगे कि वे अपनी पीढ़ियों में विश्राम दिन का पालन करते रहें। ये सदा की वाचा है। ये मेरे और इज़राइल के लोगों के बीच सदा के लिए एक चिन्ह है, क्योंकि छह दिनों में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और सातवें दिन उसने विश्राम किया और ताजगी पाई। निर्गमन 21:16-17।
बुद्धिमान लोग आस्था घोषणा के वृक्ष की आड़ में नहीं छिपे होते। उन्हें एक ध्वज की तरह ऊंचा उठाया गया है जो महान संघर्ष के अंतिम दृश्य में परमेश्वर की महिमा प्रस्तुत करते हैं। उसकी महिमा उसका चरित्र है और उसके चरित्र का जो तत्व वे संसार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं वो अल्फा और ओमेगा, आरंभ और अंत, प्रथम और अंतिम है, जिसे सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
और मैं उनके बीच एक चिन्ह ठहराऊंगा और जो उनमें से बच निकलेंगे उन्हें मैं जातियों के पास, तर्शीश, पूला और लूद, जो धनुष तानते हैं तूबाल और यावान और दूर दूर के द्वीपों में भेजूंगा, जिन्होंने ना मेरी कीर्ति सुनी है और ना मेरी महिमा देखी है, और वे अन्य जातियों में मेरी महिमा की घोषणा करेंगे, और वे समस्त जातियों में से तुम्हारे सब भाइयों को घोड़ों पर और रथों में और पालकियों में और खच्चरों पर और तेज दौड़ने वाले पशुओं पर चढ़ाकर प्रभु के लिए भेंट रूप में मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम को ले आएंगे। प्रभु कहता है, जैसे इज़राइल की संतान शुद्ध पात्र में भेंट लेकर प्रभु के भवन में लाती है, और मैं उनमें से कुछ को याजक और कुछ को लेवी कर लूंगा, प्रभु कहता है, क्योंकि जैसे नए आकाश और नई पृथ्वी जिन्हें मैं बनाऊंगा मेरे सामने स्थिर रहेंगे, वैसे ही तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम स्थिर रहेगा, प्रभु कहता है। और ऐसा होगा कि एक नए चंद्र से दूसरे नए चंद्र तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक सब प्राणी मेरे सामने आराधना करने आएंगे, प्रभु कहता है, और वे निकलकर उन मनुष्यों की लाशों को देखेंगे जिन्होंने मेरे विरुद्ध अपराध किया है, क्योंकि उनका कीड़ा नहीं मरेगा और उनकी आग नहीं बुझाई जाएगी, और वे सब प्राणियों के लिए घृणा का कारण होंगे। यशाया 66:33-22।
यशाया का अंतिम भविष्य सूचक वृत्तांत जुलाई 2023 में सांत्वनादाता के आगमन से आरंभ होता है और ये वृत्तांत वहीं समाप्त होता है जहां से शुरू हुआ था। ये सात गर्जनाओं के छिपे हुए इतिहास में प्रकट होता है, जिसकी मुहर अनुग्रह काल के बंद होने से ठीक पहले खोली जाती है। ये आरंभ में मिलराइट आंदोलन की पुनरावृत्ति की पहचान, अंत में 144,000 के आंदोलन के इतिहास के रूप में करता है। ये इलिया संदेश के साथ चलने वाले श्राप के संदेश को, राष्ट्रों को क्रोधित करने के इस्लाम के भविष्यवाणी संबंधी कार्य के संदेश के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसा कि प्रभु उसका उपयोग पहले रविवार के कानून के लिए संयुक्त राज्य पर और अंत में उसी विद्रोह के लिए समूचे विश्व पर न्याय लाने में करते हैं। हम अगले लेख में यशाया की अंतिम कथा पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।